हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 207। अगले दिन सुबह आदित्य सुनैना के कमरे में था। नहीं नहीं नहीं, तुम चाहे जो कुछ भी बोलो आदित्य, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी किसी भी कीमत पर। और चाहो तो तुम अभी के अभी सारे पेपर से मेरा नाम हटवा दो और मुझसे सब कुछ वापस ले लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। बस, सुनैना ने बार बार अपना सिर दाएं बाएं हिलाते हुए अपना आखिरी फैसला सुनाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई। वो इस तरह बर्ताव कर रही थी जैसे वो आदित्य की अब कोई भी बात सुनना और मानना नहीं चाहती थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है। ये कोई मजाक नहीं है सुनैना, इतनी बड़ी कंपनी से मैं रोज रोज ओनर का नाम ही चेंज करवाता रहूं। आदित्य ने थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहा और साथ ही वो एकदम सीरियस भी था। अच्छा ठीक है, चेंज करवाओ या फिर नहीं, तुमने कौन सा मुझसे पूछकर कंपनी में सब कुछ मेरे नाम करवाया था जो अब मेरे कहने से हटवा दोगे? लेकिन मैं ऑफिस जाकर कोई भी काम नहीं संभालने वाली, क्योंकि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और मुझे ये सब नहीं करना। बस, सुनैना ने फिर से उसी तरह मुंह बनाते हुए कहा। अब ये बस बस क्या लगा रखा है, चुपचाप जाओ यार। वैसे भी तुम MBA किस लिए कर रही हो? आखिर कहीं ना कहीं तो जॉब करनी ही थी ना तुम्हें, तो फिर मेरी कंपनी से ही शुरुआत करो और ऐसे ही तो सब कुछ सीखो। मैं कौन सा स्टार्टिंग से ही सारे काम में परफेक्ट था, तुम्हें पता है 2 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। आदित्य ने फिर से एकदम सीरियस होकर उसे समझाते हुए कहा, लेकिन सुनैना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो लगातार अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। तभी आदित्य उसके पास पहुंचा और एकदम से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोला, बस करो, तुम इस तरह गर्दन हिलाने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ऑफिस जाना होगा, आखिर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती तुम। और तुम्हें तो पता है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बोला है, इसलिए अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी से ठीक करो और जाकर अपना काम संभालो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती, ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो आदि? सुनैना ने एकदम मासूमियत से अपनी पपी आंखें आदित्य को दिखाते हुए कहा। उसे इतना मासूम चेहरा बनाते देखकर आदित्य बोला, नहीं नहीं, इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए ये सब कुछ ट्राई मत करो और जाकर रेडी हो। वैसे भी तुम्हारा कॉलेज भी ऑफ है, सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने में अभी टाइम है, फाइनल रिजल्ट्स में भी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम भी साथ चलोगे तभी मैं जाऊंगी, अकेले में नहीं जाने वाली। बस, आखिरकार सुनैना ने भी एक शर्त रखते हुए कहा। तो उसकी बात पर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, ऐसे बोलो ना कि तुम मुझे मिस करती हो, इसलिए मेरे बिना कहीं भी जाना नहीं चाहती। हाँ ठीक है, तुम जो भी समझ लो, और वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी आना जाना कौन सा क्राइम होता है, इसलिए बस मेरी यही शर्त है, अगर तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे या फिर जहन्नुम में, कहीं भी, बस मैं वहाँ पर जाऊँगी, अकेले नहीं जाऊँगी कहीं भी, ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं, सुनैना ने एकदम फ्रस्ट्रेशन से कहा। तो आदित्य उसके चेहरे की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है चलो, वैसे भी हमारा मीडिया इंटरव्यू भी बाकी है और मैंने आज रवि से वो अरेंज करने के लिए कहा है, इसलिए चलो आज हम दोनों साथ में ही मीडिया इंटरव्यू में शामिल होंगे। लेकिन, ये तुम्हारी हर बात में लेकिन क्यों आ जाता है बीच में? मैं कोई भी लेकिन नहीं सुनने वाली। और मीडिया इंटरव्यू क्यों रख लिया तुमने? मुझे ऐसे सिंपल काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और तुम हो कि इतने सारे लोगों को बुला लिया वहाँ पर। मैं मीडिया और कैमरा फेस करने में बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं हूँ। तुम्हें पता है, कल रात में जब वापस आ रही थी तब बिल्डिंग के गेट पर सबने मुझे घेर लिया था। सुनैना एकदम परेशान होते हुए ये सब कुछ बोल रही थी। तभी आदित्य ने एकदम से आकर उसके होठों पर उंगली रख दी और इशारे से उसे चुप रहने को कहा। आदित्य के ऐसा करने पर सुनैना एकदम ही चुप हो गई और अपनी पलकें झुकाते हुए उसने उसकी बात मानी और आगे कुछ भी नहीं बोली। तभी आदित्य ने कहा, गुड गर्ल, अब चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो, लेकिन मेरा मतलब है, मैं वहाँ पर सबके सामने नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम एयरपॉड लगा लेना अपने कानों में और मैं कंट्रोल रूम में रहूँगा। मैं तुम्हें देख और सुन पाऊँगा और मीडिया के सवाल भी। इसलिए जब कुछ भी ऐसा सवाल हो जिसका तुम जवाब नहीं दे पाओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और तुम्हें बिल्कुल प्रोफेशनल सबके सामने भी बिहेव करना है और बाकी तुम जो चाहो वो बोल सकती हो। मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा, तुम इतना मत सोचो। आदित्य ने सुनैना को समझाते हुए ये सब कहा और वो अभी भी सुनैना के होठों पर अपनी उंगली रखे हुए था, तो सुनैना ने बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में ऊपर नीचे अपना सिर हिलाया। ऐसा करते हुए सुनैना बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो आदित्य ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी उंगली उसके होठों से हटा ली और उसके सामने बैठ गया। उसे अपनी बात मानते देखकर आदित्य भी खुश होते हुए बोला, ये हुई ना मिसेस सिंघानिया वाली बात। वैसे कॉलेज में भी अब अपना सरनेम चेंज करवा ही लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमे, खासकर वो विराज। आदित्य के मुंह से विराज का नाम सुनकर ही सुनैना को विराज के बारे में याद आया, नहीं तो वो उसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। और उसका नाम सुनकर वो एकदम से बोली, सीरियसली आदि, विराज अब तक याद है तुम्हें? वैसे मैं तो उसके बारे में भूल भी गई थी और अब उससे किसी तरह के कॉन्टैक्ट में भी नहीं हूँ, बट तुम सच में उससे जल रहे हो आदि। वो मेरे लिए बस एक दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं किसी से नहीं जल रहा हूँ, बस वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता रहता है और उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था ना, आदित्य ने सुनैना से नजरें चुराते हुए कहा। और उसे इस तरह देखकर सुनैना जोर जोर से हंसने लगी। सुनैना को इस तरह हंसते देखकर आदित्य का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोला, अब इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? ऐसा भी कोई जोक नहीं सुनाया मैंने, और उस लड़के में कुछ तो अजीब है, मुझे वो ठीक नहीं लगता। जोक नहीं, लेकिन जब तुम इस तरह से जलते हो तो तुम्हारा फेस इतना फनी लगता है आदि। सच में तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता इस तरह से। और कोई अजीब लड़का नहीं है विराज, वो तो बस उसे पता नहीं था कि मैं मैरिड हूँ, तभी उसने मुझे प्रपोज किया था। उसके बाद जब मैंने उसे सच बता दिया तब से वो मुझसे नॉर्मल ही बर्ताव करता है, सुनैना ने अपनी हंसी कंट्रोल ते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, जो भी हो मुझे उस बारे में अब बात नहीं करनी, मैं नहाने जा रहा हूँ, आखिर ऑफिस के लिए रेडी भी तो होना है ना। इतना बोलकर आदित्य फिलहाल उस बात को इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और सुनैना पीछे से धीमी आवाज में बोली, सो क्यूट मिस्टर हस्बैंड। और आदित्य वॉशरूम के अंदर चला गया तो सुनैना उसके बारे में सोचती हुई वहां पर खड़ी मुस्कुराती रही और फिर वो भी अपने ऑफिस जाने वाले कपड़े निकालने लगी रेडी होने के लिए। आउटडोर शूटिंग लोकेशन पर नैना पूरे कास्ट, क्रू और स्टाफ मेंबर्स के साथ सुबह 7 बजे रिजॉर्ट से निकली थी। निकलने से पहले उसने सिर्फ एक कप कॉफी पी थी नाश्ते में, क्योंकि उसे सोकर उठने में देर हो गई थी और फिर रेडी होकर उसे वहां सबके साथ पहुंचना था। घर में वो ठीक से नाश्ता नहीं कर पाई थी और पूरा सेट तैयार होते होते 2-3 घंटे लग गए। अब सुबह के 10 बज रहे थे और उसे भूख लग रही थी, लेकिन वहां शूटिंग लोकेशन पर उसे कुछ भी खाने पीने का नजर नहीं आ रहा था।
नैना को भूख तो लगी थी, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई भी खाने पीने की बात नहीं हो रही थी। सब शूटिंग की तैयारियों में लगे थे, इसलिए नैना ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा और वो चुपचाप अपने डायलॉग याद कर रही थी। उसे अब तक फिल्म के सारे कास्ट से मिलने का मौका भी नहीं मिला था। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसके पास आकर कहा, मैम, मिस्टर विवान कपूर उस साइड पर बैठे हैं, आप उनके साथ जाकर एक बार साथ में डायलॉग रिहर्सल कर लीजिए, क्योंकि पहला सीन आप दोनों का साथ में ही है। असिस्टेंट डायरेक्टर की ये बात सुनकर नैना थोड़ी सी सोच में पड़ गई और उसने सोचा कि विवान कपूर से वो इस तरह मिल रही है और अभी वो रेडी भी नहीं थी पूरी तरह से। उसका हेयर और मेकअप भी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि वो शूटिंग से कुछ देर पहले ही किया जाएगा, जिससे कि खराब ना हो। नैना विवान कपूर से मिलने वाली बात को लेकर एक्साइटेड है और नर्वस भी, इसलिए उसने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा, क्या उन्होंने खुद मुझे बुलाया है? नहीं मैम, डायरेक्टर सर ने मुझसे ये कहा है, और वो आपसे बड़े एक्टर हैं, तो वो आपके पास तो आएंगे नहीं, इसलिए आप ही चली जाइए और साथ में एक बार स्क्रिप्ट देख लीजिए। ऐसे शूटिंग के वक्त डायलॉग बोलने में आप दोनों को ही आसानी होगी। इसके अलावा आप पहले से अपने को-स्टार को जानेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगी तो आप उसके साथ कंफर्टेबल भी रहेंगी, असिस्टेंट डायरेक्टर ने नैना को समझाते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर नैना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उस तरफ ही बढ़ गई। अनय के घर पर मनस्वी अब तक सोकर नहीं उठी थी, क्योंकि पिछली रात से काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने समय से उठ गया और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया था। उसे मनस्वी की रात वाली बातें याद थीं। वैसे ये पहली बार नहीं था जब उनके बीच इस तरह से लड़ाई हुई हो और उसकी वजह से अनय का मूड खराब हो गया हो, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ था जब अनय के चिल्लाकर बोलने की वजह से मनस्वी घबरा गई और चुप हो गई थी। उसके बाद फिर उन दोनों ने तब से लेकर अब तक कोई भी बात नहीं की और अनय को भी रात में नींद नहीं आ रही थी। अनय जब शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला और उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया तो उसकी आवाज़ से मनस्वी की आँख खुल गई और उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने एकदम फ्रेश नहाया धोया हैंडसम अनय खड़ा हुआ था, जिसने जीन्स के साथ ऊपर सिर्फ टैंक टॉप पहना हुआ था और उसके भीगे हुए बालों से पानी टपक रहा था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और मनस्वी ने इतने दिनों में शायद आज पहली बार ही उसे इस तरह से नोटिस किया, क्योंकि वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं और इस तरह से एक कमरे में तो कभी भी उनकी सुबह नहीं हुई, और वो भी पिछली रात की इस तरह की लड़ाई के बाद। अनय ने नोटिस कर लिया कि मनस्वी उसकी तरफ ही देख रही है, लेकिन फिर भी अनय ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया बेड पर एक तरफ रख दिया और आकर मिरर के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने साइड में रखी हुई अपनी शर्ट उठाई और मिरर के सामने खड़ा होकर पहनने लगा। उसके इस तरह मिरर के सामने आकर खड़े होने पर मनस्वी ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं और वो काफ़ी कुछ सोचते हुए वो अनय से कल रात हुई लड़ाई के बारे में बात करना चाहती थी और शायद वो उससे माफ़ी भी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे, क्योंकि कल रात मनस्वी ने उसे जो कुछ भी बोला उसके बाद सब कुछ सोचकर अब मनस्वी को ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने अनय को मतलब ही कहा था और ये बोला था कि वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है, जबकि ऐसा सच नहीं था। सभी ने देखा है कि वो उसकी माँ की कितनी फ़िक्र करता है और इसके अलावा वो अपने आसपास के सारे लोगों के बारे में ही सोचता है। सिर्फ उन दोनों का ही रिश्ता है जो ठीक नहीं चल रहा, जिसके लिए शायद कभी मनस्वी ने ही कोई कोशिश नहीं की और ना ही अनय को कोई भी मौका दिया कि वो उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक कर पाए। क्रमशः